भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने योऽमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रातस्मरणीय अर्चनीय वन्दनीय ब्रह्मलीन परम गुरुदेव प्रेमपुरी जी महाराज तथा ब्रह्मलीन सद्गुरु चरणों में कोटिशः प्रणाम। परम प्रेमास्पद सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं श्रद्धा भक्ति मति मातृशक्ति गत कुछ वर्षों से हम लोग प्रातःकालीन प्रवचन सत्र में ब्रह्म विद्या के साक्षात जनक उपनिषदों का विचार करते आ रहे हैं। ईशादि क्रम से हम लोग तीन उपनिषदों का विचार प्रवचन सत्र में कर चुके हैं। ईश कठ और केन इन तीन उपनिषदों का विचार यहां पर हो गया है। इस वर्ष चतुर्थ उपनिषद अध्ययन परंपरा से प्रश्न उपनिषद होती है। प्रश्न उपनिषद का विचार यथामति हम सब मिलकर के करेंगे। इसमें आप सब जानते हैं कितने वेद हैं, चार वेद हैं और हरेक वेद के दो दो प्रकरण हुआ करते हैं। एक का नाम है कर्मकांड, दूसरे प्रकरण का नाम है ज्ञानकांड। और वेदों के प्रकारांतर से और वेद ये नाम होता है मंत्र तथा ब्राह्मणात्मक दो भागों में वेद विभक्त हैं और मंत्र ब्राह्मणयोर वेद संज्ञा ये कहा जाता है। मंत्र और ब्राह्मण इन दोनों का भी वेद ये नाम है। और प्रत्येक वेद में मंत्र और ब्राह्मण ऐसे दो भाग हुआ करते हैं, और मंत्र तथा ब्राह्मण दोनों में भी कर्म प्रकरण, कर्मकांड तथा ज्ञान कांड हुआ करता है। तो ये दस उपनिषदों में कई उपनिषद हैं, अथर्ववेद की हैं, एक ही उपनिषद हैं जो ऋग्वेद की हैं, चार वेद हैं जो ऋग, यजु, साम, अथर्व नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ऋग्वेद की उपनिषद हैं दस उपनिषदों में, जिस पर शंकराचार्य जी का भाष्य है, ऐतरेय उपनिषद, और बाकी यजुर्वेद की उपनिषदें हैं ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, तैतरीय उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ये चारों उपनिषदें यजुर्वेद की हैं। और सामवेद की हैं केनोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, और अथर्ववेद की हैं ये प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ये अथर्ववेद की हैं। तो इस प्रकार ये जो जिस उपनिषद का इस सत्र में हम लोगों को विचार करना है, ये उपनिषद होगी चार वेदों में से, कौन से वेद की? अथर्ववेद की। और अथर्ववेद में भी दो भेद हैं, एक आपका वो कर्मकांड मंत्र और ब्राह्मण, तो मंत्र भाग की, तो अथर्ववेद में उपनिषद आती है मुंडक उपनिषद, और ये प्रश्न उपनिषद को माना जाता है अथर्ववेद के ब्राह्मण भाग की। और मंत्र और ब्राह्मण में माना जाता है आपस में संबंध, व्याख्या, व्याख्यान भाव। तो व्याख्या कहा जाता है, जिसका व्याख्यान किया जाता है उसे व्याख्या कहते हैं, जिसकी चर्चा की जाती है, जिस का विचार हो रहा है वो व्याख्या विषय है। तो मंत्र में संक्षेप में जिस अर्थ को बताया जाता है उसी का विस्तार से कथन किया जाता है ब्राह्मण के द्वारा। विस्तार से कहने वाले का नाम है व्याख्यान, और संक्षेप में किसी अर्थ को बताने वाले ग्रंथ को कहा जाता है व्याख्या। मंत्र में वेदों के संक्षेप में जिस अर्थ को बताया गया है उसी अर्थ को खूब विस्तार से ब्राह्मण भाग में बताया जाता है, इसलिए मंत्र को कहा जाता है व्याख्येय, वो संक्षेप में अर्थ को बताने वाला होता है और विस्तार से बताता है ब्राह्मण भाग। तो अथर्ववेद के मंत्र भाग में आई हुई प्रसिद्ध उपनिषद है मुंडक उपनिषद, उसमें जो अर्थ संक्षेप में कहा गया उसी अर्थ को विस्तार से बताने के लिए प्रश्न उपनिषद है, इसलिए प्रश्न उपनिषद को माना जाता है व्याख्यान और मुंडक उपनिषद को माना जाता है व्याख्येय। उसका व्याख्यान किया जा रहा है। मुंडक उपनिषद में संक्षेप में जिस अर्थ को बताया उस अर्थ को विस्तार से बता रही है प्रश्न उपनिषद। और उपनिषद ये नाम आप देखेंगे प्रत्येक उपनिषद के साथ जुड़ा हुआ है। दस उपनिषदों में ईशावास्योपनिषद, इसमें ईशावास्य छोड़ दीजिए तो उपनिषद, केन उपनिषद में केन को हटाइए उपनिषद, तो उपनिषद एक सामान्य नाम है। उपनिषद इस शब्द का अर्थ हुआ करता है, एक उपनिषदों में जो शब्द क्या नाम संस्कृत में जो शब्द बनते हैं वो बनते हैं अलग अलग धातुओं से अलग अलग प्रत्यय करने पर शब्द बनते हैं। तो एक धातु है सद धातु, उसके तीन अर्थ होते हैं। एक विशरण सदृली विशरण गति अवसादनेषु, तो विशरण शब्द का अर्थ तो तीन अर्थ हुए, एक विशरण दूसरा गति और तीसरा अवसाद। तो विशरण शब्द का अर्थ होता है विनाश और गति का अर्थ होता है प्राप्ति। गति का अर्थ गमन भी है, गति का अर्थ प्राप्ति भी है। और विशरण का अर्थ हुआ विनाश, गति का अर्थ हुआ प्राप्ति, और अवसादन शब्द का अर्थ होता है शिथिलीकरण, ढीला करना। शिथिलीकरण में शिथिल शब्द का अर्थ होता है ढीला, और शिथिलीकरण का अर्थ होता है ढीला करना। तो ये उपनिषद में सद धातु का तो अर्थ हो जाएगा ये तीन, नाश प्राप्ति और ढीला करना। और उपनिषद शब्द का अर्थ निकलता है उसे कर्ता अर्थ में क्विप प्रत्यय करने के बाद ये तीनों क्रिया करने वाला, विनाश करने वाला, प्राप्त कराने वाला, और ये शिथिल करने वाला ग्रंथ। ऐसे सीधे सीधे जो विनाश करें, किसको विनाश करें, तो आपके दुख तथा दुख के कारण को जो नष्ट करें उसका विनाश करें उसे उपनिषद कहते हैं। आपके दुखों की दुखों का आत्यंतिक नाश करने वाली, ये उपनिषद शब्द का अर्थ निकला। उपनिषद शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग है, इसलिए हिंदी में उसका अर्थ निकलेगा आपके दुखों का आत्यंतिक विनाश करने वाली, एक अर्थ निकलता है। दूसरा एक अर्थ निकलता है आपको प्राप्त कराने वाली। तो क्या प्राप्त कराती है, तो ब्रह्म भाव प्राप्त कराने वाली। ब्रह्म भाव यानी निरतिशय आनंद, तो निरतिशय आनंद की प्राप्ति करा दें, आनंद की प्राप्ति करने की तीव्र इच्छा वाले लोगों को आनंद की प्राप्ति करा दें जो, उसे भी उपनिषद कहते हैं। और उपनिषद शब्द का एक अर्थ निकलता है शिथिल कर दें। तो जो आपके जन्म मरण रूप दुख को शिथिल कर दें, ढीला कर दें, ये जिस लोक में हम लोग रहते हैं इसका नाम है मृत्यु लोक। तो मृत्यु लोक इसका नाम इसलिए है कि यहां पर एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। बाहर निकली हुई श्वास अंदर जाएगी इसका भी कोई निश्चय नहीं है कब जाना पड़े। प्रारब्ध समाप्त हो जाए तो यहां बैठे बैठे ही लुढ़क जाए। तो जहां पर प्रतिपल मृत्यु का भय लगा रहता है, कोई भी क्षण ऐसा रिक्त न जाता हो जो आपको आश्वस्त करे कि निश्चित रूप से इस क्षण में मैं मरूंगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। कोई कह नहीं सकता, गारंटी नहीं दे सकता कि इस क्षण नहीं जाना है। तो प्रतिपल मृत्यु का भय जिस लोक निवासियों को निश्चित रूप से लगा रहता है उस लोक का नाम है मृत्यु लोक। लेकिन गारंटी के साथ कह सकते हैं कि स्वर्ग लोक में, ब्रह्म लोक में मृत्यु वहां के नागरिक की इतने समय के लिए निश्चित रूप से होगी ही नहीं, ऐसा निश्चय है वहां। ऐसा निश्चय यहां मृत्यु लोक में नहीं है। इसलिए स्वर्ग लोक और ब्रह्म लोक की नागरिकता यदि मिल जाए तो जिसको ब्रह्म लोक का ग्रीन कार्ड मिल गया तो ये समझ लो कि गारंटी मिल गई आपको कि जब तक चंद्रमा और सूर्य हैं तब तक आप मरने वाले नहीं हैं। ब्रह्मलोक की नागरिकता मिलने का अर्थ यही है। वहां जाने वाला वेदों में लिखा है कि इस कल्प में वापस नहीं आता, उमरता नहीं है। और कठोपनिषद में आपने सुना है कि नचिकेता यमराज जी को कहते हैं कि स्वर्ग लोक में आप सहसा विनाश लीला नहीं करते। यद्यपि इसी कल्प में मृत्यु लोक में स्वर्ग लोक के नागरिकों को वापस आना पड़ता है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशांति, लेकिन जैसे मृत्यु लोक से अचानक ही जाना होता है ऐसा अचानक वहां से आना नहीं होता है। इसलिए स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक के प्राप्ति के साधनों को भी कहा जाता है एक प्रकार से ब्रह्मलोक की प्राप्ति का जो साधन है और स्वर्गलोक की प्राप्ति का जो साधन है उसे भी उपनिषद शब्द से कहा जाता है। तो आपके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति कराने वाला कौन है, आपको निरति से आनंद की खोज है उसे प्राप्त कराने वाला कौन है, तो उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद शब्द से तो परिचय हुआ लेकिन वो उपनिषद का अर्थ क्या होगा, कौन वो वस्तु है, कौन सा पदार्थ है जो आपके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति कराता है, आपको निरति से आनंद की उपलब्धि कराता है, ऐसा पदार्थ कौन है, वो साधन कौन है, उसको जानते हैं। उपनिषद तो शब्द हुआ, उपनिषद शब्द का अर्थ कौन है, ये कहेंगे दिखाओ कौन सा है उपनिषद, तो वो क्या है? हाँ, वो है ब्रह्म विद्या ज्ञान। और ज्ञान कहाँ रहता है, ज्ञान का एड्रेस क्या है, रेसिडेंस है, ज्ञान भगवान में रहता है। तो ज्ञान ये होता है जैसे शिशु अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, ये शरीर की अवस्थाएं, ये कहां रहती है शरीर की अवस्थाएं? जो शरीर का परिणाम है वो शरीर में रहेगा, परिणाम परिणामी में रहता है। ऐसे ज्ञान आपके मन का परिणाम है, एक वृत्ति है मन की, मन की वृत्ति है ना, प्रमाण से उत्पन्न हुई जो आपके मन की एक वृत्ति है उसका नाम है प्रमा, उसी का नाम है ज्ञान, वह मन का परिणाम है। वो कहां रहेगा? तो शरीर का परिणाम शरीर में रहता है, मन का परिणाम मन में रहेगा। तो यदि उपनिषद शब्द का अर्थ आपके दुखों का आत्यंतिक विनाश करने वाला और आपको निरतिशय आनंद उपलब्ध कराने वाला है, ये उपनिषद शब्द का अर्थ है। उपनिषद तो शब्द हुआ और उसका अर्थ हुआ ये आपके दुखों का विनाश करने वाला, आपको निरतिशय आनंद उपलब्ध कराने वाला। और वो कौन है? तो ज्ञान है। और वो ज्ञान कहां रहता है? उसको खरीदना चाहेंगे, मेडिसिन खरीदना चाहेंगे तो मेडिकल स्टोर पर जाएंगे जहां रहता है। ऐसे ज्ञान वो है आपके चित्त की वृत्ति, वो चित्त में रहेगा ज्ञान। और ये ज्ञान किस प्रकार का ज्ञान? तो ज्ञान, ज्ञानी तो सब है, ऐसा कोई नहीं है। सप्तसती में लिखा है कि ज्ञानम अस्ति समस्तस्य प्राणिनः विषय गोचरे, कहते सभी प्राणियों को ज्ञान है, ज्ञानहीन कोई होता ही नहीं है। मन है तो मन का परिणाम ज्ञान रहेगा ही, लेकिन सबको ज्ञान है विषय विषयक, विषय गोचर यानी विषय कहते हैं दृश्य अनात्म पदार्थों को, शब्द आदि को, पशु पक्षियों को भी ज्ञान है। वो अपने जीने के लिए उपयोगी ज्ञान, क्या खाने से हम स्वस्थ रहेंगे, क्या खाने से अस्वस्थ होंगे, ये ज्ञान पशुओं को पक्षियों को भी अच्छी तरह से है। कौन हमसे प्रेम करता है, कौन हमें समाप्त कर सकता है, इसका ज्ञान पशु पक्षियों को अच्छी तरह से होता है। शत्रु मित्रता का ज्ञान ये सब लोगों को ही है, लेकिन ये ज्ञान आपके दुखों का आत्यंतिक विनाशक नहीं है, वो उपनिषद शब्द का अर्थ नहीं है। और आपको इस प्रकार के ज्ञान से निरतिशय आनंद प्राप्त भी नहीं होगा। ये ज्ञान तो अनादिकाल से हरेक जन्म में हम लोगों को होता ही जा रहा है, ये हमारा अपना है, ये पराया है, ये शत्रु है, ये मित्र है, ये हमारा घर है, ये दूसरे का घर है, ये ज्ञान तो हो ही रहा है, लेकिन इस ज्ञान से दुख का नाश और सुख की प्राप्ति नहीं होती। वो ज्ञान उपनिषद शब्द का अर्थभूत वो है ब्रह्मात्म एकत्व अनुभूति, ब्रह्मात्म एकत्व साक्षात्कार, जीवो ब्रह्मैव न अपरः, इसका ज्ञान। वो ज्ञान आप उपनिषद शब्द का अर्थ है, अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति मन की। और उससे ये ज्ञान जिसके चित्त में उत्पन्न होता है उसे फिर वो दुख नहीं होता। घड़ी, मोबाइल आजकल वाटरप्रूफ बनाते हैं ना, पानी में पड़ने पर भी पानी का दुष्परिणाम, पानी के संपर्क से होने वाला जो साइड इफेक्ट है वो नहीं होता उन पर। ऐसे ये ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार जो उपनिषद शब्द का अर्थ है, ये क्या करता है? जिसके चित्त में उत्पन्न होता है उसे दुखप्रूफ बना देता है। वो दुखप्रूफ बनने वाला फिर उसे दुख स्पर्श नहीं करता। शरीर में मन में दुख आ भी जाए, बाहर एक प्रकार से सभी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां उपस्थित हो जाए, और सामान्य व्यक्ति जो ज्ञान से रहित है वह हार्ट फेल होकर के एक समय जा भी सकता है, ऐसी परिस्थिति आ जाए, लेकिन यह विचलित नहीं होता। वो दुख बाहरी दुखों से उसे कोई स्पर्श नहीं हो पाता, यही दुखों का नाश है। उपनिषदों में लिखा है न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य। कहते हैं ब्रह्मज्ञानी जिसके चित्त में अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक उपनिषद शब्द का अर्थभूता वृत्ति उत्पन्न हुई है, ज्ञान उत्पन्न हुआ है, वह दुख से लिपायमान नहीं होता, यानी दुख उसे स्पर्श नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? कहते वो बाह्य है, का मतलब दुख जिसमें रहता है। दुख कहाँ रहता है? तो दुख रहता है मन में, वह मन रूपी क्षेत्र का धर्म है, और आप क्षेत्रज्ञ हैं, और क्षेत्रज्ञ को भगवान ने कहा क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि, यानी परमात्मा है, ब्रह्म है, और ब्रह्म में दुख कहीं पर भी बताया नहीं गया है वेद के किसी भी वाक्य के द्वारा, ब्रह्म में कोई दुख का वर्णन नहीं हुआ है। इसलिए ब्रह्म दुख रहित है, और वो दुख रहित जो ब्रह्म है वह बाह्य है, यानी दुख के आश्रयभूत मन से असंग है। असंगो ही अयम पुरुष, ये जो पुरुष है आत्मा, वह वस्तुतः मन से असंग है, और दुखी मन के साथ संग करने से ही मन का जो धर्म है दुख वह आत्मा में आरोपित होता है। और श्रुति कहती है ज्ञान ये बताता है कि दुख धर्मी मन आप नहीं हो, अपितु तत्वमसि, यानी दुख धर्म जिसका नहीं है ऐसे ब्रह्म आप हो। ये ज्ञान जब होता है तो वह ज्ञान दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति कराता है, का अर्थ है दुखों का कारण जो दुखी मन के साथ अज्ञान वशात किया हुआ तादात्म्य अभिमान है, इस तादात्म्य अभिमान से आपको रहित कर देता है। तो कारण ही नहीं रहेगा, बासी नहीं रहेगा, तो बांसुरी बनेगी नहीं, तो उसकी ध्वनि भी नहीं होगी, वो बांसुरी बजेगी भी नहीं। तो बांस है दुखी मन के साथ तादात्म्य अभिमान, भ्रांति से मन को ही अपना स्वरूप समझना, मन को ही मैं समझना, और जो मन को मैं समझेगा तो वो दुख से रहित नहीं हो सकता। फिर मन तो दुखी है ही है, मन में इच्छाएं हैं, दुख हैं, क्रोध हैं, ये सारे विकार हैं, और उन सारे विकारों से युक्त हो जाएगा मन को अपना स्वरूप समझने वाला। इसलिए उपनिषद शब्द का अर्थ हुआ वह ज्ञान जो आपको सारे मनों से अलग आपके वास्तविक स्वरूप का ही मैं के रूप में प्रकाश करें आपके चित्त में, वो ज्ञान है, वो उपनिषद शब्द का अर्थ है। और फिर वो ब्रह्म का आपको मैं के रूप में अनुभव होगा, तो ब्रह्म तो निरतिशय आनंद स्वरूप है ही है, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि श्रुतियां उसे आनंद स्वरूप बता रही है। तो इस प्रकार वो ज्ञान आपको आनंद की प्राप्ति भी कराता है। इसलिए उपनिषद शब्द का अर्थ है, एक तो आपके दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति करने वाला और आपको निरतिशय आनंद उपलब्ध कराने वाला, और दूसरा एक अर्थ है आपके जन्म मरणादि दुख को शिथिल करने वाला, ढीला करने वाला। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ये होता रहता है, जो शास्त्र विहित पुण्य कर्मों का अनुष्ठान नहीं करते। शास्त्रों ने बताया हुआ जो परमात्मा का चिंतन है, भक्ति है, वो नहीं करते, अपितु स्वाभाविक कर्म तथा स्वाभाविक चिंतन, विषय चिंतन करते हैं। उन्हें उपनिषदों में बताया गया कि तीसरा मार्ग मिलता है, संसार की प्राप्ति के लिए तीन मार्ग बताए हुए हैं अलग अलग। दो मार्ग हैं, एक उत्तरायण मार्ग एक दक्षिणायन मार्ग। उत्तरायण मार्ग पहुंचाता है ब्रह्मलोक में, जो संसार में पूर्ण विकसित लोक है, और मध्यम है स्वर्गलोक, और तीसरा है जायस्व म्रियस्व, वह मृत्युलोक में कीट पतंग आदि जो मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट योनि है उनकी उपलब्धि कराने वाला। तो संसार में तीन लोक हैं, ये भूर्भुव स्व, तो भू ये पृथ्वी लोक है, भूव है स्व अंतरिक्ष लोक यानी स्वर्गलोक, तथा ये ब्रह्मलोक। और इन तीन लोकों की प्राप्ति के लिए अलग अलग तीन मार्ग हैं। इनमें से ज्यादातर लोग शास्त्रीय कर्म करने वाले नहीं मिलते, शास्त्रीय चिंतन करने वाले नहीं मिलते, स्वाभाविक कर्म तथा स्वाभाविक चिंतन करने वाले अधिक हैं। इसलिए उन्हें मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट योनि प्राप्त कराने वाला तीसरा मार्ग है, उसका नाम है जायस्व म्रियस्व। जायस्व म्रियस्व का अर्थ होता है जन्म लो और मरो, जन्मो मरो, ये बार बार जन्मना मरना, यही जिसमें लगा हुआ है तो माना जाता है उसका जन्म मरण ढीला नहीं हुआ है, बार बार वही क्रिया हो रही है। तो बार बार जो क्रिया करता है माना जाता है वह क्रिया उसके अंदर भरी हुई है। ये हॉल फुल कब माना जाएगा? जब बाहर के व्यक्तियों को खड़े रहने की भी इस हॉल में जगह ना हो तो कहा जाए हाउसफुल हो गया। और अभी शिथिल है, जितने बैठे हैं उससे थोड़ा अधिक ही आकर के और भी बैठ सकते हैं, तो अवकाश है, अभी ढीला है, बैठ सकते हैं और भी आकर के। तो ऐसे मात्र दो ही क्रिया जो कर रहा है, जन्म ले रहा है मर रहा है, जन्म ले रहा है मर रहा है, तो माना जाता है जन्म मरण उसके यहां हाउसफुल है, ठुसाठुस भरा हुआ है। ये दो क्रिया जन्म मरण की शिथिलता नहीं है, अवकाश नहीं है दूसरी क्रिया का उसमें जन्म, और थोड़ा दोनों में गैप हो जाए, कई कल्पों का कई युगों का तो माना जा सकता है, कई युगों का गैप हो जाए, इस युग में गया हुआ इसी युग में न आना पड़े, दो चार युग तक कम से कम स्वर्ग में रहना पड़े, तो माना जाएगा जन्म मरण के बीच में गैप होने से शिथिल हो गया जन्म मरण। तो स्वर्ग में जाते हैं तो कई युगों तक स्वर्ग में रहते हैं और फिर वहां से वापस आते हैं, तो शिथिलीकरण हो गया जन्म मरण का। और ब्रह्मलोक में जाने के बाद तो इतना ढीला पड़ जाता है जन्म मरण कि इस कल्प में फिर वापस आना ही नहीं पड़ता, जब तक सूर्य चंद्रमा है यानी ये संसार है तब तक वो ब्रह्मलोक में ही रहेगा। वो समाप्त होने के बाद फिर ये कल्प समाप्त हो जाए, ब्रह्मा जी बदल जाए, तो अगले कल्प में ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मलोक में रहते हुए ब्रह्म ज्ञान न होने पर दूसरे कल्प में यहां वापस आना होता है। तो काफी शिथिल हो गया। और ये शिथिल कौन करता है? जो ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराएगा आपको साधन, वो तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति का साधन शास्त्रों ने बताया है भगवान की भक्ति। भक्ति का ही दूसरा नाम वेदों में है उपासना। उपासना करने वाले ही जाते हैं ब्रह्मलोक। उसका वो साधन हुआ उपासना। और उपासना भी एक मन की ही वृत्ति है, इसलिए उसे भी ब्रह्म विद्या ही कहा जाता है। ब्रह्म विद्या दो प्रकार की है, एक सगुण ब्रह्म विद्या, दूसरी निर्गुण ब्रह्म विद्या। निर्गुण ब्रह्म विद्या का नाम है ज्ञान। वो सीधे सीधे आपके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति कराता है, दुखों को नष्ट करता है, आनंद की उपलब्धि कराता है। वो पहला उपनिषद शब्द का अर्थ होगा। और दूसरा निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान और सविशेष ब्रह्म ज्ञान। सगुण ब्रह्म ज्ञान वह आपको सीधे ब्रह्म ज्ञान नहीं कराएगा, सीधे आपके सारे दुखों की निवृत्ति नहीं कराएगा, ब्रह्मलोक पहुंचाएगा, आपके जन्म मरण को शिथिल करेगा। तो जो जन्म मरण को शिथिल करे उसे भी कहा जाता है उपनिषद। वो अपर ब्रह्म विद्या, सगुण ब्रह्म विद्या, उपासना, भक्ति, ये शब्द अलग अलग है शास्त्रों में। सत्संग में आप सुनोगे भक्ति, कहीं उपासना, कहीं अपर ब्रह्म विद्या, कहीं सविशेष ब्रह्म विद्या, कहीं सगुण ब्रह्म विद्या। लेकिन ये नाम अलग अलग होने पर भी इनका अर्थ एक है, भक्ति। यही भक्ति है और ये जो है आपको पहुंचाएगी ब्रह्मलोक में। वो भी आपके मन की वृत्ति है। इसलिए उपनिषद शब्द का अर्थ एक प्रकार से हुआ ब्रह्म विद्या। वो ब्रह्म विद्या दो प्रकार की, एक ज्ञान निर्गुण ब्रह्म विद्या और सगुण ब्रह्म विद्या उपासना कहो या भक्ति कहो। भक्ति भी मन से संबंध रखती है, उपासना भी मन का ही धर्म है। इन दोनों भी मनोवृत्ति रूप होने पर भी दोनों में अंतर है। ज्ञान में और उपासना में अंतर है ना, दोनों भी मन के परिणाम है। दोनों में अंतर क्या होगा? ज्ञान तो होता है आपके प्रयत्न से उत्पन्न नहीं होता, ज्ञान होता है प्रमाण से, और इसलिए उसे कहा जाता है प्रमा। निर्गुण ब्रह्म विद्या वो प्रमा है, वो प्रमाण से उत्पन्न होगी। और उपासना आप शास्त्र ने बताए हुए परमात्मा के सगुण साकार स्वरूप का अपने प्रयत्न से चिंतन करोगे, एक वृत्ति बनाएंगे सगुण के आकार की, सगुण साकार के आकार की या सगुण निराकार के आकार की एक वृत्ति बनेगी। वो आपके प्रयत्न से होगी। प्रयत्न से होने से उसे मानसिक क्रिया कहा जाता है। मन के मानस क्रिया है, वो मानस प्रयत्न से निष्पन्न होती है। लेकिन वो भी उपनिषद है, उसे भी आपके जन्म मरण का शिथिलीकरण करने के कारण उपनिषद कहा जाता है। और ये सीधे सीधे उपनिषद शब्द का अर्थ हुआ सगुण ब्रह्म विद्या, निर्गुण ब्रह्म विद्या। और लेकिन आपको पूछेंगे कि प्रवचन किस विषय पर हो रहा है, तो कहोगे उपनिषद पर। कौन से उपनिषद पर? तो कहा प्रश्न उपनिषद पर। तो प्रश्न उपनिषद पर प्रवचन हो रहा का अर्थ प्रश्न उपनिषद ये प्रवचन का विषय बन गया। उपनिषद शब्द का अर्थ प्रवचन तो ग्रंथ पर होता है। ये ग्रंथ भी उपनिषद कहा जा रहा है। वो ग्रंथ है प्रमाण, वह उपनिषद शब्द का अर्थभूत जो प्रमा है, उस प्रमा का साधन होने से उसे भी कहा जाता है उपनिषद। उपनिषद शब्द का मुख्य अर्थ तो होगा प्रमा, वो वृत्ति ब्रह्म विद्या, और वो ब्रह्म दोनों प्रकार की ब्रह्म विद्या आपको प्राप्त होगी उपनिषदों के माध्यम से, ग्रंथ के माध्यम से। इसलिए ब्रह्म विद्या का साधन होने से उपनिषद भी ग्रंथ भी उपनिषद है, और उस पर प्रवचन किया जाता है। उस पर वो तो प्रवचन का विषय बनेगा। प्रवचन शब्द का अर्थ क्या होता है? अध्यापन। स्वाध्याय का अर्थ होता है अध्ययन, और प्रवचन का अर्थ होता है अध्यापन। तो अध्यापन ग्रंथ का होता है, उससे फिर अध्येता को हो जाता है ज्ञान, और वो ज्ञान वस्तुतः उपनिषद है। तो इस प्रकार ये जो उपनिषद सभी दसों उपनिषदों को उपनिषद तो ऐसे बहुत हैं। ये कहा जाता है चारों वेदों की 1180 शाखाएं थी किसी समय, अभी इतनी उपलब्ध नहीं है, और हरेक शाखा में कम से कम एक उपनिषद तो होती है, अधिक भी हुआ करती है, इसलिए उपनिषद तो अधिक है। लेकिन शंकराचार्य जी का भाष्य, आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी का भाष्य 10 उपनिषदों पर प्रसिद्ध है, उनका वर्तमान में अध्ययन अध्यापन प्रसिद्ध है, इसलिए 10 उपनिषदें मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। उसमें से प्रत्येक के साथ उपनिषद शब्द जुड़ा है, और साथ में फिर अलग अलग ये करने के लिए कहीं ईशावास्य उपनिषद, कहीं केनोपनिषद, तो कहीं कठोपनिषद, कहीं बृहदारण्यक उपनिषद, यहां प्रश्नोपनिषद। इसका प्रश्न ये क्यों जुड़ गया? ईशावास्य उपनिषद में तो ईशावास्य शब्द इसलिए जुड़ गया कि ईशावास्य उपनिषद के 18 मंत्रों में से पहला मंत्र है ईशावास्यम इदम सर्वम, उसमें से पहले दो शब्द है ईशावास्य, उनको जोड़ दिया तो उपनिषद शब्द के साथ, तो ईशावास्योपनिषद ये हुआ। ऐसे केनोपनिषद का प्रथम मंत्र है केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, इसमें पहले शब्द को जोड़ दिया तो केनोपनिषद हुआ। कठोपनिषद में वो कठ शाखा की होने के कारण शाखा का नाम जोड़ दिया उपनिषद शब्द के साथ, तो कठोपनिषद हुआ। ऐसे यहां पर ये प्रश्न एक शब्द जोड़ दिया उपनिषद शब्द के साथ, तो प्रश्नोपनिषद ये नाम हुआ चौथी उपनिषद का, प्रश्नोपनिषद। कठोपनिषद में तो कठ शाखा की होने से वो नाम के साथ शाखा का नाम जोड़ दिया तो कठोपनिषद हुआ माना जा सकता है। उधर पहले वाले दो उपनिषदों में तो पहले मंत्रस्थ पहले शब्द को जोड़ रहे हैं, वो नाम हुआ। यहां प्रश्न उपनिषद में प्रश्न शब्द को का क्या संबंध है जोड़ने का है? तो इसलिए कि ये यहां एक कथा आएगी, आख्यायिका आएगी, छह ऋषि सुकेशा सत्यकाम आदि मिलकर के आचार्य पिपलाद जी के पास जाएंगे, और उन छह ऋषियों के अलग अलग छह प्रश्न होंगे, और उन छह प्रश्नों का उत्तर आचार्य पिपलाद जी देंगे, तो ये ग्रंथ पूरा होगा। तो इसलिए छह ऋषि अपने अपने छह प्रश्न लेकर के एक साथ गए हैं उनके पास, तो उनके प्रश्नों को ही जोड़ दिया गया उपनिषद शब्द के साथ, तो प्रश्न उपनिषद हुआ। तो प्रश्न के और उत्तर के रूप में ये ग्रंथ होने से प्रश्न उपनिषद हुआ। और इस प्रश्न उपनिषद में पहले बताया कि मुंडक उपनिषद का ही व्याख्यान हो रहा है। छह प्रश्न आएंगे सुकेशा आदि छह ऋषियों के, और मुंडक उपनिषद जिसकी व्याख्या प्रश्न उपनिषद है उसमें आपको दो विद्याओं का प्रतिपादन मिलेगा, दो विद्या की शुरुआत में चर्चा मिलेगी। मुंडक उपनिषद में शौनक ऋषि अंगिरा ऋषि के पास ब्रह्म जिज्ञासु बनकर के जाते हैं और वे प्रश्न करते हैं कि आप बताइए कि किसको जानने से सब कुछ जाना जाता है, कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, वो कौन है बताइए। तो सीधे सीधे जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है उसे बताने के पहले अंगिरा जी शौनक को बताते कि दो विद्याएं हैं, द्वे विद्ये वेदितव्ये, पराचय वा पराच, पर और अपर विद्या, ऐसी दो प्रकार की विद्या है, एक अपरा विद्या है दूसरी परा विद्या है। कहा अपरा विद्या कौन है, तो अपरा विद्या चारों वेद और छह वेदांग, इसे बताया गया अपरा विद्या के रूप में। और उन चारों वेदों से तथा वेदों से लेना वेदों का कर्मकांड, वो अपरा विद्या है। अपरा विद्या के रूप में वहां पर बताए गए कर्म को और उपासना को कहा जाता है अपरा विद्या। जो संसार की प्राप्ति के संसार में भी जो उत्कृष्ट गति है, संसार अंतपाती जो श्रेष्ठ फल है, उस श्रेष्ठ फल की प्राप्ति के साधन को अपरा विद्या के रूप में वहां पर बताया गया, और वो है श्रेष्ठ गति संसार में उपलब्ध कराने वाली कर्मकांड के द्वारा बताया गया कर्म और उपासना कांड के द्वारा बताई गई उपासना। इसलिए कर्म और उपासना को वहां पर बताया गया है अपरा विद्या के रूप में, और परा विद्या के रूप में बताया गया है ब्रह्म ज्ञान को। अथ परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, कि तद अक्षर शब्द से बताया गया परमात्मा को, ब्रह्म को, और ब्रह्म की प्राप्ति जिस विद्या से हो जाए वह विद्या है पराविद्या। पराविद्या अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक उपनिषद शब्द का अर्थभूत जो निर्विशेष ब्रह्म विद्या है उससे होती है ब्रह्म की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, इसलिए वो है पराविद्या। और इन दोनों विद्याओं का विस्तार से वर्णन प्रश्नोपनिषद में होगा। छह प्रश्न आएंगे अलग अलग छह ऋषि के, इन छह ऋषियों में से पहले कबंधी नाम के जो ऋषि हैं उनका प्रश्न होगा और उससे अपरा विद्या के फल की चर्चा होगी, उस अपरा विद्या के फल के विषय में वो प्रश्न है। और अपरा विद्या का फल आप जानते हैं क्या है, संसार। तो संसार के स्वरूप का वर्णन छह प्रश्नों में से प्रथम प्रश्न तथा उसके उत्तर के रूप में जो ग्रंथ आएगा उससे होगा, और उस संसार की प्राप्ति का साधन जो अपरा विद्या है उस अपरा विद्या के दो अंश बताए, एक कर्म रूप अंश और दूसरा उपासना रूप अंश। उसमें कर्म रूप अंश की विस्तार से चर्चा तो वेद में कर्मकांड नाम का जो एक स्वतंत्र प्रकरण है उसमें होती है, और एक अपरा विद्या का अंश है उपासना। उस उपासना की द्वितीय तथा तृतीय प्रश्न के उत्तर के रूप में चर्चा होगी। इसलिए कुल छह प्रकरण प्रश्न उपनिषद में आएंगे उसमें से तीन प्रकरण, तीन प्रश्नात्मक, तो अपरा विद्या तथा अपरा विद्या के फल की चर्चा इन तीन प्रकरणों में होगी। तीन प्रश्न तीन प्रकरण हैं, तो एक प्रश्न तो होगा पहला वाला अपरा विद्या के फल की चर्चा करने वाला, दूसरे दो, दूसरा और तीसरा प्रकरण वो होगा अपरा विद्या का द्वितीय अंश उपासना की चर्चा करने वाला। उपासनाएं भी अनेकों प्रकार की हैं, उसमें प्रधान उपासना एक मानी जाती है हिरण्यगर्भ की यानी सूत्रात्मा की उपासना, प्राण उपासना। समष्टि प्राण है, सूत्रात्मा जिसे कहा जाता है उसे ही प्रधान माना जाता है। छांदों के उपनिषद में प्रधान का अर्थ सांख्यों का प्रधान नहीं समझना, प्रधान का अर्थ मुख्य। इस संसार में पूरे संसार को धारण करके रखने वाला प्राण है समष्टि प्राण, उसी से स्थूल जगत टिका हुआ है। जैसे शरीर वेष्टि शरीर ये कहा जाता है ना, यत पिंडे तत् ब्रह्मांड है, ये सारे समष्टि संसार में ब्रह्मांड में क्या होगा इसका निर्धारण आपके वेष्टि शरीर में जैसा होता है उसी से करना। एक प्रकार से पूरे ब्रह्मांड का एक प्रयोगशाला में जैसे प्रयोग करने के लिए तो छोटा सा वो रूप ये किया जाता है ना, ऐसा ये शरीर है पिंड है ब्रह्मांड का एक छोटा सा मॉडल, और इसमें मुख्य कौन है प्राण। ऐसे ही समष्टि में भी मुख्य माना जाता है प्राण को ही, वो समष्टि प्राण है। इस शरीर में आंख न होने से तो जन्मांध का भी पूरा जीवन चल जाता है बिना आंख के। बधिर जो होता है जन्मत ही उसका स्रोत इंद्रिय न होने पर भी काम चल जाता है, पूरा जीवन वो व्यतीत कर लेता है, जी लेता है। लेकिन किसी शरीर में सारे पांचों ज्ञान इंद्रिया हो, पांचों कर्म इंद्रिया हो, मन भी हो, लेकिन प्राण न हो तो चलेगा नहीं, चल सकता। तो जैसे जीवन को चलाने के लिए शरीर को जीवित रखने के लिए मुख्य भूमिका का निर्वहन करता है प्राण, ऐसे ही पूरे संसार को स्थिर रखने के लिए, समष्टि का जीवन चलाने के लिए जीवनाधार है प्राण, समष्टि प्राण। और उस समष्टि प्राण की उपासना की चर्चा प्रश्न उपनिषद के द्वितीय प्रकरण में और तृतीय प्रकरण में होगी। उस प्राण का स्वरूप आदि निश्चित हो जाएगा, जिसकी उपासना करनी है, जिसका चिंतन करना है, पहले उसका स्वरूप निश्चित होना चाहिए ना, वो कैसा है क्या है। और उपासना शब्द का अर्थ होता है गुण चिंतनम उपासनम। आप किसी की उपासना करते हो का अर्थ है उसके गुणों का चिंतन करते हो। तो प्राण की उपासना करनी का अर्थ है प्राण के गुणों का चिंतन करना है। और वो उपास्य की उपासना दो प्रकार से होती है, एक भेद दृष्टि से अपने से भिन्न समझ करके, उत्कृष्ट समझ करके उसकी उपासना चिंतन, और एक अभेद चिंतन होता है उसे अहंग्रह उपासना कहते हैं। दोनों प्रकार की उपासना की पद्धति वेदों में बताई गई है, वेद सम्मत है, भेद उपासना भी और अभेद उपासना भी। तो यहां प्राण की बताई जाएगी अभेद उपासना, और वो संसार में सर्वोत्कृष्ट फल प्रदान करने वाली है, वो अपरा विद्या में सर्वश्रेष्ठ अपरा विद्या मानी जाती है प्राण उपासना। और उसका वर्णन आपको मिलेगा द्वितीय तृतीय प्रश्न के तथा उत्तर के रूप में, जो ये दो प्रकरण आएंगे। चौथे पांचवे और छठवे में आएगी विस्तार से निर्विशेष ब्रह्म विद्या की चर्चा, इस पर हम लोग कल फिर चिंतन करेंगे चौथे पांचवे में। हरिओम।